मैं लगा, मटके से वो दूध गिरने लगा। यशोदा जी ने सोचा ये दूध देख रहा है, मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो जीवित रहने का अधिकार नहीं, मर जाना अच्छा है। भक्त लोग ऐसा ही सोचते हैं, यदि कृष्ण की सेवा में नहीं कर सका, भजन नहीं कर सका, तो जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे जिनके हृदय में है वो तो भक्त है, और जिनके अंदर में ऐसी भावना नहीं आई तो अभी भक्त नहीं हुआ। सीधी सी बात, दूध उफन करके गिर रहा है दूध, आग में, मैं आग में जल मरूंगा, कृष्ण की सेवा में नहीं लगा। यशोदा मैया के स्तन में इतना दूध है, इतना दूध है कि विश्व ब्रह्मांड को, यहां तक कि कर्णाभ दिशाई और क्षीरोप दिशाई का दूध उनके स्तन से आता है, किसी दिन समाप्त नहीं होगा। और कृष्ण इतने लंबोदर हैं, विश्व ब्रह्मांड को अपने पेट में धारण करने वाले, उनकी भूख भी कभी नहीं मिटेगी। तो ये चिर जीवन तक, कोटि कोटि जन्मों तक, जब तक सृष्टि और लय नहीं हो तब तक ये न तो दूध समाप्त होगा न कृष्ण की भूख समाप्त होगी, ये तो चलता रहेगा। तो कृष्ण हम की सेवा हमारी कैसे ग्रहण करेंगे? यदि राधा जी सेवा कर रही हैं और नंद बाबा यशोदा जी सेवा कर रही हैं, तो हम लोगों को सेवा मिलेगी हमारे जैसे लोगों को? ये मिलना मुश्किल। कृष्ण ने सोचा, दूध ने सोचा, अब प्राण प्रत्याग कर। यशोदा मैया बड़ी दयालु, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा मारो मत, मैं अपना दूध छोड़ाना छोड़ा करके तुम्हारी कुटुंब को अब उनकी सेवा में लगा दूंगा। इसलिए झट उन्होंने क्या किया, अपना स्तन कृष्ण से छुड़ा दिया। कृष्ण ने जोर से पकड़ लिया मुख से उनका स्तन, और अपने हाथों से दोनों स्तनों को ऐसे पकड़ लिया और पैरों को लगा दिया, लपेट लिया। यशोदा मैया किसी तरह से न छुड़ाए, पूतना 10,000 की 50,000 हाथी वाली बल वाली राक्षसी नहीं छुड़ा सकी, कंस नहीं छुड़ा सका, जरासंध नहीं छुड़ा सका, कोई भी नहीं छुड़ा सका, जिसके पकड़ कृष्ण में जिसको पकड़ लेते हैं नहीं छुड़ा पा। आज यशोदा मैया ने कहा बैठो यहां, बस ऐसे पकड़ करके ऐसे बैठा। कृष्ण ताकते रह गए, उनकी सर्वशक्तिमत्ता ना जाने और भगवत्ता कहां लुप्त हो गई। ऊ करके रोने लग गए, दांत कड़मड़ाने लगे, कुछ क्रोध सा भी आया। जब आदमी किसी सबल से पड़ता है पल्ला, तो वो जब कुछ नहीं कर पाता, एक सफर जड़ दिया उसने और ये कुछ नहीं, तो भीतर भीतर क्रोध तो होगा ही। ऐसे इनको यशोदा मैया जी से कुछ क्रोध सा हुआ, उन्होंने मटकी फोड़ दी नीचे से, और इसके बाद पहले तो गिराने की चेष्टा की, नहीं गिरी तो फिर उन्होंने पीछे से मारा एक लोढ़े से, वो फूट गया। इसके बाद में कृष्ण देखा यार ये तो कैसा निकल रहा है, बड़ा आनंद हुआ। उस पर चलते हुए एक घर में घुस गए, और इसके बाद में यशोदा मैया आई, देखा जी कहाँ गया, पीछे पीछे वहां जाकर के देखा जी ये तो मक्खन खा रहा। इसके बाद में उसको पकड़ने के लिए दौड़ी भागा, जिसको मन भी नहीं पकड़ पाता, जिस ब्रह्मा जी का मन, शंकर जी का मन, और यशोदा मैया ने पीछे से पकड़ करके उनको पकड़ लिया। अब तो रोने लगे, उनकी सिटकी निकल गई, रोने लगी घिघिया करके, सचमुच में रोने, अभिनय नहीं। जब रोने लगे तो उनको दयाई, उन्होंने कहा चल रखिया छोड़ देता, अच्छा तुमको बांध करके रखो। बांधने लगे, यहीं पर हमारा कहने का विषय है, ये प्रसंग बस्ता सुनाया। अब वो बांध रहे हैं, एक ओखल है जिसको कहते हैं उदूखल, कृष्ण है खल, खलनायक जो होता है ना, यहां पर चोरी किए हुए हैं, और उदूखल, उदूखल मैंने क्या है? खल है किंतु ये उपखल है, इसकी सहायता करने वाला खल है, दोनों को दंड देना है। पहले खल को बांधूंगी और फिर उसको उदूखल को भी बांधूंगी, उसी से दोनों को दंड देना है। इसलिए अपने सिर से क्या वो जूड़ा बांधने की रस्सी, रेशम की डोरी निकाली, रेशम की डोरी उनकी 3 हाथ 1 गज, देखा जैसे कृष्ण की कमर कितनी, 12 अंगुल है केवल, अभी तो 2.5 वर्ष के बच्चे हैं, और कमर बड़ी पतली, ये जोड़ा चौड़ी, ललाट भव्य, समस्त अंग पतंग बड़े सुंदर। तो कमर पतली जैसे सिंह का यहां इतना, और कमर होती है पतली कृष्ण की, तो वो 12 अंगुल सोने की जंजीर लगाई गई थी। यशोदा जी ने
छुद्र छुद्र घंटियों को लगा करके कमर पेटी उनको बना दी। अब यशोदा जी बांध रहे हैं, देखिए जैसे छोटी सी थी कमर, तो कृष्ण के पहले ओदुखल में लगा करके या उसमें लगा करके पहले कृष्ण के कमर में बांध रहे। बांधने जब गई तो देखा जे तीन गज की वो रस्सी, जब देखा तो दो अंगुल कम पड़ गई कमर में। देखा जे ये क्यों कम पड़ गई, इसकी कमर तो है 12 अंगुली की और मेरी रस्सी है तीन गज, तीन हाथ की, कितना, तीन गज एक गज की। अब ये कमर बढ़ी नहीं और हमारी रस्सी कमी नहीं, तो 12 अंगुली तीन हाथ से क्यों नहीं बन जाता, बनना चाहिए किंतु बदन नहीं रही। बड़ा उनको विस्मय हुआ, उन्होंने गोपी से कहा एक रस्सी ले आओ तो और हमारे घर की। तो उसने कहा तू बांधेगी, अरे ब्रह्मा जी ने इसके ललाट में बंधन ही नहीं रखा कभी, तो तू क्या बांधेगी। साधारण एक गोपी, तो एक गोपी ताली बजा करके हंसती हुई इनसे कह रही है तू क्या बांधेगी, नहीं बांध सकती। कहे मैं जरूर बांधूंगी, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं बरसों नहीं, मैं सारा जीवन बांध करके ही पानी पीऊंगी अन्यथा नहीं। उन्होंने एकदम संकल्प कर दिया जो मैं बांधूंगी ही। इधर में कृष्ण की कमर वैसे ही एक रस्सी दो रस्सी तीन रस्सी चार रस्सी पांच रस्सी छह रस्सी, यहां तक कि ब्रज की सारी रस्सियां आई और गोपियां कौतूहल बस यशोदा जी को छकाने के लिए चिढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी रस्सियां सिरों पर रख करके और लेकर के पटक रही, तू बांध तो देखे। यशोदा जी को आंसू आ गए, बांध नहीं सकी। 12 बज गए नहीं बंधी। सवेरे से, सवेरे माने कहो अभी अभी सूर्य नहीं उदित हुआ उसके पहले से बांध रही है और बांधते 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 12 बज गया, पानी नहीं पिया, कुछ नहीं पिया, बच्चे ने भी नहीं किया, दूध नहीं खाया, बांधती बांधती थक गई। सुंदर शरीर, कोमल शरीर, सुकुमार, पसीने के बिंदु से तर हो गई, सिर के जूड़े से जितने फूल थे वो नीचे गिर गए, मुख लाल हो गया, उसमें कुछ लज्जा की भावना, कुछ अत्यंत दुखित होने की, एक छोटे से बच्चे को जो हमारे पेट से निकला मैं नहीं बांध सकती, ये सब क्या कहेंगी गोपियां, हमें हंसेंगी रोज, ये सारा जीवन के लिए मुझे कष्ट हो जाएगा, ये अपने बच्चे को नहीं बांध क्यों नहीं रही। कृष्ण सोच रहे हैं आज यशोदा मैया ने बांध दिया तो फिर ये बच्चे जो है हमारे साथ खेलने के लिए सिदाम सुदाम मधुमा मधुमंगल तो कृष्ण लवंग अर्जुन कोकिल उज्ज्वल ये इसके साथ में कैसे खेलूंगा, और ये गैया रंभा रही अपने बच्चे को भी दूध नहीं देती तो ये तो किसी को दूध नहीं देंगी, ये बड़ी दुखी होंगी, बछड़े भी दूध नहीं पाएंगे, हमारा वन में जाना इत्यादि या इधर उधर घूमना भी सब मंद हो जाएगा, खेलना कूदना, आज यशोदा मैया मुझे न बांधे तो। इतने में उनकी शक्ति जोग माया झट प्रवेश कर गई, न रस्सी कम रही है रस्सी बढ़ रही, कमर नहीं बंध रही बढ़ रही, तो भी बंध नहीं पा रहा। अब तो बड़ी विचित्र लीला हुई, बधी नहीं रही, बांधते बांधते जब ऐसा परिश्रम हुआ कि उनके ये सब गिरने लग गए, अनुख सूख गया, बड़ी दुखी हो गई, बोली हे हमारे ठाकुर जी गृह देवता नारायण, सालग्राम शिला को पूजा करते थे, आज मेरी लज्जा किसी प्रकार से रखो, जैने मैंने यदि आंतरिक हृदय से तुम्हारी मैंने पूजा की हो तो आज अपने बच्चे को मैं अंततः बांधूं। तो वो किसकी प्रार्थना कर रही है, अपने ठाकुर जी की, किंतु उस ठाकुर जी के भी ठाकुर जी हैं कौन, कृष्ण स्वयं है, वो छोटा सा लाला ही, ये नारायण इत्यादि राम सबका वही है मूल, एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान। उन्होंने देखा जी मैया पसीने से तरबर हो गई, मुख विवर्ण हो रहा है, बड़ी दुखी है, कृपया शीत सबंधने, बस कृष्ण की कृपा शक्ति आई, जोग माया शक्ति को उड़ा दिया, सर्वशक्तिमत्ता को उड़ा दिया, भगवान की जितनी प्रकार की भी शक्तियां हैं उन समस्त शक्तियों में भगवान की कृपा जो है यही सबसे ऊंची है, उनका भक्त वात्सल्य सबसे ऊंचा है, इसके आगे कोई भी शक्ति काम नहीं करती, ऐसा भक्त वात्सल्य या करुणा भगवान की है, बस करुणा आई, बांध क्यों नहीं रही थी? जब तक भक्त में यह अभिमान है कि मैं भगवान का भजन कर लूंगा, मैं यह काम कर लूंगा, तब तक नहीं होगा। कृष्ण किसी के बंधन में नहीं आ सकते हैं अपने परिश्रम से, साधन भजन से नहीं आएंगे। साधन भजन के साथ साथ में भगवान की कृपा भी चाहिए। जब तक कि भगवान की कृपा नहीं होगी और भगवान की भक्त की चेष्टा नहीं होगी, ये दो अंगुल है। पहले अंगुल का हुई क्या हुई? अपनी चेष्टा, प्राण लगा दिया, या तो भगवान का मिलना या प्राण का जाना। हो गया समय? अच्छा, अब बस समाप्त करता हूं। तो इस तरह से दो चीज चाहिए, प्रतिज्ञा चाहिए। मैं जब तक प्राण रहेगा पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ में गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए भगवान की सेवा करूंगा, भगवान का भजन करूंगा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी उसकी भावना देकर के, परिश्रम देकर के, जैसे यशोदा जी का परिश्रम कृष्ण ने देखा, साथ साथ उनकी करुणा उदयित हो गई। ऐसे ही भगवान भक्तों के परिश्रम को देख करके, साधन को देख करके द्रवित हो जाते हैं। द्रवित होने से ठीक ऐसे हो जाता है जैसे यशोदा जी का वही एक केवल था रस्सी, बस उसी से ही पूरे बंध गए और वो दुखल को भी उन्होंने बांध दिया। इसलिए जब तक कि हमारी प्रेममयी कोई साधना नहीं होगी, साधना कैसी? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति। कोई भी हमारी अभिलाषा नहीं रहेगी जागतिक और पारमार्थिक, या कोई भी ज्ञान कर्म योग इत्यादि की हमें कोई जरूरत नहीं। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण की जिसमें प्रसन्नता हो, प्रीति हो, ऐसे ही निरंतर पैद धारावत अविच्छिन्न गति से उसका साधन हो, तब तो भगवान कहां गए? द्रवित हो जाएंगे। इसके लिए उदाहरण दिया, एक बिल्ली और एक बंदर। बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाती। बिल्ली क्या बच्चा मेव मेव करता है, कहीं नहीं जाता। भूख लगती है तो मेव मेव, कहीं जाना होगा तो मेव मेव। उसकी मैया उसको उठा करके अपने मुख से पकड़ लेगी, लेकर के दूसरी जगह जाएगी। बिल्ली का कोई प्रयोजन नहीं है बच्चा का, और बंदर का क्या है? मैया खड़ी रहेगी, झट बच्चा आया उसके पीठ पर या यहाँ पेट में पकड़ लेगा और वो उसको लेकर के कूद जाएगी, एक पेड़ से दूसरे, एक मकान से दूसरे। मैया नहीं पकड़ेगी, पकड़ेगा कौन? बच्चा। साधन इसी प्रकार का, मुझे साधन भजन करने की क्या जरूरत है? जब भगवान की कृपा होगी तो अपने आप हो जाएगा। यह बिल्ली का बच्चे का उदाहरण। और दूसरा उदाहरण क्या है? बंदर के बच्चे का। उसकी मैया नहीं पकड़ेगी, पकड़ेगा कौन? वो बच्चा। ऐसे ही साधक को कृष्ण को पकड़ना चाहिए, भगवान के कृपा के लिए प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। ये दोनों मिलकर के तब भगवान को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। मैं कुछ नहीं करूंगा भगवान की कृपा कर देंगे, ये भी नहीं होगा। और भगवान की कृपा पर सब कुछ है, मुझे नहीं कुछ करना है, तो भी नहीं होगा। और मैं सब कुछ करता हूं किंतु मैं अपने साधन से भगवान को पा लूंगा, ये भी नहीं होगा। दोनों का मिलना जरूरी है, तब भगवान का भजन होगा। उसमें अपनी चेष्टा क्या है? मैं धन नहीं चाहता, संसार का कोई चीज नहीं चाहता, वैकुंठ नहीं चाहता, मुक्ति नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं चाहता, ब्रज का यही प्रेम चाहता। ये तो अपना साधन, और उसके लिए कैसा साधन? जैसे रूप सनातन ने किया, दिन रात कभी कुछ खाना नहीं, कभी चना कभी सूखी रोटी, दिन में सोते नहीं रात में सोते नहीं, कभी एक घंटा सो लिया नहीं तो कभी वो भी नहीं, कभी चना को भी और भी माना। इस तरह से भजन करते थे ब्रज में, एक एक वृक्ष के नीचे। हम उतना ना कर सके, अंततः तो गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए शुद्ध रूप में भगवान की का कुछ भजन तो कर सकते हैं, श्रवण की तरह। इस तरह से भजन हम लोग करें, भगवान द्रवित हो जाएंगे और साथ ही साथ वो बंधन में आ जाएंगे। इस तरह से हम लोग श्रवण कीर्तन करते हुए साधन भजन करें और हरि कथा का श्रवण करें, राधा कृष्ण के चरणों में अनुराग हो, यही भागवत का प्रधान उद्देश्य है। आज यही तक अपना वक्तव्य कह करके समाप्त करता हूं।
ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सदभक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमा तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके मैं सबसे पहले अपने परमाराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म में नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपनी आंतरिक श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात इस कथा का आयोजन करने वाले श्री अरविंद लोचन जी और सनातन धर्म के यहाँ के प्रमुख जो कार्यकर्ता हैं उनको मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ। ये हमारे क्या नाम
लोचन जी
अरविंद लोचन जी बहुत सा छोटा सा बच्चा था तभी से जानता हूं के पास ही वहां रहता था। रहने वाला ब्रज का है, गिरिराज जी की तराई में गिरिराज जी के पास ही गांव है, अन्य और ग्राम वहीं का रहने वाला है। ब्रज में जन्म लेना साधारण बात नहीं है, ब्रजवासी भी है। जयपुर के बाद में फिर कुछ पढ़ा लिखा, शास्त्रों का ज्ञान भी हुआ, भजन कर रहा है, यहाँ पर भी हरि कथा का आयोजन करके बहुत से लोगों को भगवान की तरफ में ये ले आया है बच्चा। सबसे संसार में बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा उपकार जो लोग समझते हैं कि अस्पताल को कहीं पर बना देना, स्कूल कॉलेज बना देना, निर्धन लोगों को खिला देना, इसी को उपकार समझते हैं। किंतु आप अस्पताल कॉलेज करेंगे, मेडिकल कॉलेज आपने कर दिया, चोर डकैत बदमाश अधिकांश रूप में वहीं पर चिकित्सित होकर के और फिर डकैती डालेंगे और तरह तरह के अन्याय करेंगे, इसका फल कौन भोगेगा? उन्हीं को भोगना पड़ेगा। यही एक ऐसा उपकार है जिसमें किसी का अपकार नहीं होता। कोटि कोटि अस्पताल, कोटि कोटि स्कूल कॉलेज, कोटि कोटि सब कुछ करने की अपेक्षा यदि एक जीव के विचार को भगवान की तरफ में मोड़ दिया जाए, इससे बढ़कर और कोई उपकार नहीं है। एक जीव के को संसार की तरफ से मोड़कर भगवान के तरफ में लगा देना, इसके समान विश्व में कोई भी उपकार नहीं है। इसमें जो कुछ सहायता जो व्यक्ति करता है, ये भगवान की तरफ में इसकी चित्त वृत्ति मुड़ जाए, वो जन्म जन्मांतर के लिए भगवान के चरण में पहुंच जाता है, भव सागर को पार कर जाता है। इसलिए इस विषय में जो सहायता करता है वो गुरु ही है, बहुत महान उपकारी है। यही हमारी गुरु परंपरा का विचार है, नारद जी से लेकर के ब्रह्मा जी से लेकर के अब तक हम लोग इसी के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं भागवत पाठ करने के लिए, प्रवचन करने के लिए। उद्देश्य है यदि इसमें से दो चार को भी अच्छी तरह से संपूर्ण से उनके चित्त वृत्ति को बदलकर भगवान के चरणों में लगा दिया तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। उस पुष्प को, सुंदर पुष्प, मधुर पुष्प को राधा कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देंगे, इसलिए राधा कृष्ण भी प्रसन्न होंगे। इसलिए मैं भी आशीर्वाद करता हूँ कि ये अपना काम में सफल रहे, ऐसे सेवा करे, दूसरों को, सभी लोगों को भगवान की सेवा में आकर्षित करके लगाए, अपने भी लगे। अभी इसको भी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दूसरों की निंदा, प्रतिष्ठा की लालसा, अर्थ की कामना, स्त्रियों के प्रति ये आसक्ति, ये सभी छोड़ना है, छोड़ करके आगे बढ़ना है। तो मैं आशीर्वाद करता हूँ धीरे धीरे ये बढ़े अपने अपने उद्देश्य की तरफ में और दूसरों को भी इसके तरफ में मूल लाएं। मैं समझता हूँ आगे भी इसी तरह से सब लोगों के घर में आकर्षित करेंगे। शिष्य करना बड़ी भारी बात नहीं है, ऐरे गैरे नत्थू सभी लोग आजकल शिष्य कर रहे हैं और अपने जहन्नम में जाते हैं, शिष्यों को भी जहन्नम में ले जाते हैं, ये बड़ी भारी बात नहीं है। उसके चित्त वृत्ति को मोड़ देना यही गुरु का कार्य है। तुम शिष्य हो जाओ ये गुरु नहीं कहता, कहता कि राधा कृष्ण का भजन करें। जिसके अंदर में गुरु होने की लालसा है सब, वो तो एक साधारण मनुष्य से गया दीता है, ये भावना नहीं होनी चाहिए। गुरु कौन है? जिन्होंने अपने क्रोध को, मन के बेग को, अपनी जिह्वा के बेग को, अपने उदर और उपस्थ के बेगों को जीत लिया, वही जगत का गुरु है। जिन्होंने भजन करना आरंभ कर दिया, जिनको ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं, प्रत्येक जीव का स्वरूप, चाहे कोई माने और न माने, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, प्रत्येक जीव का स्वरूप कृष्णदास। ऊपर से ये पिंजड़ा या चूल्हा लगा दिया है मिट्टी का, इसके अंदर में वो है। इस चीज को जो भजन करके अनुभव कर सके और दूसरों को भी बतला सके, ये गुरु का कार्य है। नारद जी का यही कार्य था। हमारे रूप सनातन ने किसी को शिष्य नहीं किया, किंतु जगत के गुरु हैं। महाप्रभु जी ने कितने लोगों को शिष्य किया, मीराबाई जी ने कितने लोगों को शिष्य बनाया, योग्य थी कि नहीं, महाप्रभु जी योग्य नहीं थे, इसलिए यही कार्य है। स्वयं गुरु होकर के आचरण करो, अपने आप सब शिष्य होंगे, शिष्य की लालसा नहीं रहेगी, उसको सभी लोग उसको गुरु मानेंगे। इसलिए ऐसी सब भावनाएं हृदय से निकल जानी चाहिए और शुद्ध रूप में सभी लोगों को भगवान की तरफ बढ़ाने की चेष्टा करनी चाहिए। किसी किसी महान भाव का यह प्रश्न है, भागवत की कथा हो रही है, इसमें मीराबाई जी का कोई प्रकरण ही नहीं आया, भागवत में मीरा जी का नाम नहीं है। हम लोग भागवत कह रहे हैं, भक्तों में वो भी भागवत के समय के भक्त नहीं, उसमें प्रहलाद महाराज जी का नाम, ध्रुव जी का नाम, नारद जी का नाम, कपिल हवि, अंतरिक्ष पलायन प्रबुद्ध इत्यादि का नाम और ब्रजवासियों के नाम इसमें है। विशेष करके गोपियों का सबसे महत्व इसमें है। मीरा जी कोई शक नहीं बहुत उच्च कोटि की भक्त थी और द्वारका में जाकर कृष्ण के विग्रह में प्रविष्ट हो गई, साधारण लोगों के लिए कभी भी संभव नहीं है। वृंदावन में आई और वृंदावन से चली गई द्वारका में, द्वारका में द्वारकाधीश का मंदिर है और उसके दरवाजे पर गई, दरवाजा खुल गया, भीतर में प्रवेश गई एक वधु के रूप में और उनके अंगों में प्रवेश हुई, किसी ने और फिर देखा नहीं, साधारण बात है। किंतु एक बात इसमें है, साधारण आदमी इस विषय को नहीं समझेंगे। भक्ति किसको कहते हैं, भक्ति का विचार क्या है? वैकुंठ से ऊपर मीराबाई का स्थान चला गया, किंतु किसी भी गोपी को गोपी का आनुगत्य स्वीकार नहीं किया, राधा जी की सखी नहीं बनी, राधा जी के चरणों की सेवा नहीं की, ब्रज में नहीं रही। इसलिए ब्रजरस के जो रसिक हैं, कृष्ण प्रेम के जो लाडले हैं, वो उन्हीं लोगों को अधिक श्रेय देते हैं जो राधा जी की सेवा करने वाला हो। वही कृष्ण को जीत सकता है। यह भक्ति सर्वोत्तम है, यह श्रीमद्भागवत में भी कहा गया है। ऐसा जो लोग कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं और गोपियों को और राधा जी को प्रसन्न नहीं करना चाहते, उनकी भक्ति को धिक्कार है। कृष्ण का भजन करते हैं, सूर्य को तो मानते हैं किंतु सूर्य के तेज को नहीं मानते, आग मानते हैं उसकी दाहिका शक्ति को नहीं मानते। उसी प्रकार से कृष्ण का मानते हैं किंतु राधा जी को नहीं मानते, उनकी भक्ति ऐसे ही बेकार है। इन सब पर विचार करके श्रीमद्भागवत में शुद्ध भक्ति का विचार करते हुए आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्य काचित उपासना बजुबधुवर्ग न जाकल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्राद्रो न परम। गोपियों की आराधना आज तक जितनी भी विश्व में आराधना है, सबसे श्रेष्ठ गोपियों की आराधना है। इससे बढ़कर के आज न भूतो न भविष्यति। इसलिए हमारे सुखदेव जी रसिक शिरोमणि गोपियों का चरित्र का वर्णन किया है। इन चरित्रों में विशेष करके राजपंचाध्यायी, वेणु गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत इत्यादि प्रसिद्ध हैं। हमारे श्रीमान शुभानंद जी ने बतलाया होगा इसके संबंध में। मैं संक्षेप में दो एक बातें बतलाना चाहता हूं। आप लोगों को भजन का निर्देश इसमें कुछ प्राप्त हो सकता है, और यदि सचमुच में आप लोग इस भजन की पद्धति को ग्रहण कर सकें तो आप लोगों का भी जीवन धन्य हो जाएगा। इस चीज को पहले समझिए। बहुत से लोग समझते हैं उद्धव जी ब्रज में गए और गोपियों को ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद में लौट आए। कृष्ण की ऐसी इच्छा नहीं थी। उद्धव जी कृष्ण के प्रिय मंत्री हैं, उनके सखा हैं, उनके दास हैं, उनके एकदम घुले मिले हुए बंधु भी हैं और उनके मंत्री भी हैं। कृष्ण के बड़े प्रिय हैं, उनको ब्रज में भेजा। बोले गोपियों के समान विश्व में हमारा कोई भी प्रिय नहीं है। उन्होंने मेरे लिए अपने देह दैहिक समस्त चीजों को छोड़ दिया है। वे हमारा किसी प्रकार से स्मरण करते हुए केवल प्राण धारण कर रही हैं। किस लिए? कृष्ण ने कहा था कि मैं कल नहीं तो परसों जरूर आ जाऊंगा। इसी आशा पर उनके प्राण टिके हुए हैं जो अब कल नहीं तो परसों जरूर आ जाएंगे। बस इसी पर भरोसा उनको है, इसलिए किसी प्रकार से प्राणों को धारण कर रहे हैं। कृष्ण उद्धव जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए और दबदबाई नेत्रों से अश्रुपूरित लोचन से उद्धव जी से कहा, प्यारे उद्धव, विश्व में गोपियों के समान हमारा कोई भी प्रिय नहीं है। वे उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना मन भी हमको दे दिया है। अब उनका वो मन नहीं, देह दायक जो कुछ है सब ही उन्हीं का है। इसलिए आप जाएं, हमारे माता पिता को सांत्वना देंगे और फिर गोपियों को भी सांत्वना दे करके फिर लौट आएंगे। कृष्ण ने सोचा ये उद्धव जी को माता पिता को संतोष देने के लिए, सांत्वना देने के लिए उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने देखा कि इस भरीपुरी मथुरापुरी में ऐसा कोई भी एक व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपने प्राणों को खोल करके उसे बातचीत कर सकूं। अपने हृदय की जो भावनाएं हैं मैं उसे कैसे व्यक्त करूं? अभी यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसलिए उद्धव को जरा ब्रज में भेजूं और स्कूल में भेजूं जहां पर मैंने प्रेम की शिक्षा ली थी, उस पाठशाला में। उस पाठशाला में बहुत सी अध्यापिकाएं हैं, ललितादि शाखा इत्यादि, और प्रधान अध्यापिका प्रिंसिपल कौन है?
श्रीमती राधिका जी प्रिंसिपल हैं। मैंने उनके चरणों की छत्र छाया में रह करके प्रेम का पाठ पढ़ा। अब इस मथुरापुरी में हमारा कोई गुरु भाई नहीं जो हमारी भावनाओं को समझ सके, इसलिए उद्धव को छल बल से वहां पर भेजना चाहिए ऐसा सोच करके और उनको ब्रज भेजा। उद्धव को कुछ अभिमान है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, किसने कुछ सोचा होगा ही, और सोच करके हमें यह भार दिया कि जाकर के उनको सांत्वना देना, और उनको किसी प्रकार से सांत्वना देना है। उनकी ये नियत नहीं थी कि मैं जाकर के कुछ सीखूंगा वहां। कृष्ण से बोले, मैं आपको छोड़कर के एक मिनट भी नहीं रह सकता, मैं कैसे वहां पर रहूंगा जीऊंगा, आप तो वहां भेज रहे हैं। मैं कहे वहां, मैं तो यहां है ही नहीं हूं, मैं हूं तो पूरे रूप से कहां हूं, ब्रज में हूं। तो वहां जाएगा देखेगा कि मैं संपूर्ण रूप से वहां हूं, मैं यहां पर केवल थोड़ा सा यहां पर हूं, वन रेकरिंग पॉइंट लिया क्या होता है वैसे मैं हूं, मैं यहां पर नहीं हूं। उनको भेजा, अपने गले की माला उनको दे दी वैजयंती, अपना मुकुट भी पहना दिया, पीतंबर भी उनको पहना दिया, सोने का रथ था कंस से जो मिला था उनको मार करके, उस सोने के रथ पर उद्धव जी को बैठा दिया और भेज दिया। उद्धव जी बड़े आनंद से वहां पर गए। जब तक कृष्ण साथ में चल रहे थे तब तक रथ में नहीं बैठे, इसलिए कृष्ण पीछे रह गए और उनको आदेश दिया जी इसमें बैठ करके जाओ। शाम हो गई, वहां पर पहुंचे, नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे, तब तक शाम हो गई। बच्चों ने कहा यही नंद बाबा का घर है। भीतर में गए, नंद बाबा को चरण छू करके प्रणाम किया और घर में बैठे, उन्होंने बैठाया, आदर जतन किया। देखा जे शाम हो गई है, कुछ खिलाना पिलाना चाहिए। घर में जितने बर्तन हैं औधे पड़े हुए हैं, जब से कृष्ण गए हैं रसोई घर में नहीं बनी। चूल्हे पर मकड़ों ने मकड़ियों ने जाल बुन रखा, बर्तन तब से कोई साफ नहीं हुआ। किसके लिए कौन रसोई बने जब खाने वाला ही नहीं रहा। सब लोग उनके विरह में तड़प रहे हैं। कोयल ने कुहकना बंद कर दिया, मयूरों ने नाचना बंद कर दिया, गायों ने खाना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। बड़ी अजीब वहां की दशा हो गई। उद्धव जी जाग गए, नंद बाबा जी इसके बाद में बैठे, दोनों में वार्तालाप हो। नंद जी पूछना चाहते हैं कि कृष्ण हमारा कन्हैया कैसा है, और इतना प्रेम बढ़ रहा है ये नहीं पूछ सकते ये हमारा कन्हैया कैसा है। जहां कृष्ण उच्चारण किया तहीं भभक भभक करके रोने लग गए, गला उनका बंद होने लगा। किसी प्रकार से बोले, हमारा भाई ठीक है। भैया कौन? वसुदेव। भैया ठीक है, और वहां के सब लोग कुशल से हैं? क्या कृष्ण कभी हमें याद करता है, अपने मैया को, अपने पिताजी को, मुझे? बस इतना ही कहा था, गला रुद्ध होया और कुछ बोल नहीं सके, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। किसी तरह से जब बोल नहीं सके, रोने लग गए, तो बस ये उद्धव जी देखते हैं, आज तक तो मैंने ऐसा कहीं प्रेम नहीं देखा, कृष्ण के लिए इतना रोना। शास्त्रों में लिखा है यदि कोई कृष्ण के लिए रोता है तो वो महासौभाग्यवान है। लोग तो अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, अपनी माता के लिए, स्त्री के लिए रोते हैं, धन संपत्ति के लिए रोते हैं, कृष्ण के लिए तो कोई रोता नहीं। यदि किसी को कृष्ण के लिए रोना आ गया तो वो जगत में महान है। अब वो कह रहे हैं, यदि मैं कहूं ये नंद बाबा आप तो बड़े सौभाग्यवान हैं, आपके पुत्र स्वयं परब्रह्म कृष्ण हैं जो सर्वशक्तिमान हैं,
जो जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करने वालों के भी प्रलय करने वाले हैं। ये ब्रह्मा इत्यादि के इत्यादि तो उनको ध्यान में भी नहीं पाते, इसे आपसे कौन सा सौभाग्यवान व्यक्ति होगा, किंतु कह नहीं पा रहे हैं। नंद बाबा सिसक सिसक करके रो रहे हों और उनको कहा जाए आप परम सौभाग्यवान हैं, ये तो उचित नहीं, ये तो संतना होगी। खूब रोइए आप, आपके जैसा जगत में और कोई नहीं है, कृष्ण के लिए रो रहे हैं, ऐसा तो कह नहीं सकते। और यदि कहेंगे नंद बाबा आप मत रोइए, तो शास्त्र कहेंगे कैसा आदमी है ये, तुमको ज्ञान नहीं है, जो भगवान के लिए रो रहा है तड़प रहा है उसको तुम कह रहे हो जो मत रो। सोचा जो मैं क्या कहूं, कुछ भी नहीं कह सके। अंत में बोले बड़े मुश्किल से, ओ यदि जगत में किसी का जन्म लेना सार्थक है तो वसुदेव नंद और यशोदा का ही जीवन सार्थक है, आप ही लोगों का जीवन सार्थक है। इतना कहे थे नंद बाबा और जोर से रोने लग गए। क्या कहा, मेरे जैसा और कोई सौभाग्यवान नहीं है इस विश्व में, और यशोदा जैसा, तुम इतने तुमको अकल नहीं हुई ये कहने, कैसे तुमने कहा, तुम ये कहता है कि जगत में यदि दुर्भागा कोई है विश्व भर में तो नंद बाबा यशोदा जैसा कोई दुर्भागा नहीं, तब तो एक बात हो सकती थी, मैं कैसे सौभाग्यवान हूं बताओ तो, मेरा बेटा हमें छोड़ करके चला गया, कृष्ण जैसा बेटा और छोड़ करके चला गया, मैं सौभाग्यवान हूं, इतना भी तुमको नहीं पता, कृष्ण का संग तुमने नहीं किया, और ये कह करके रोने लगे। उद्धव जी ने देखा कि सचमुच में मैंने अन्याय किया, ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, किंतु दूसरा मैं कहता क्या, शास्त्र की दृष्टि से तो मेरा कहा हुआ सोलहवां ना सत्य है, संपूर्ण रूप में सत्य है, इसका अतिरिक्त मैं क्या कहूं। बहुत विचार करने लगे, उनको कुछ प्रतीति नहीं हुआ। नंद बाबा कहने लगे देखो बेटा मैं तुम्हें समझाता हूं, एक पिता थे दशरथ, जो अपने बेटे के वन गमन करने पर बस इतना ही निकला हाराम हाराम, और फिर प्राण उनके चले गए, और अभी तक मैं जीवित हूं, हमारा बेटा चला गया मथुरा, और कितने दिन हो गए और मैं अभी तक जीवित हूं, तो कृष्ण के प्रति हमारा स्नेह कैसा, एक मछली पानी के बिना एक बूंद भी पानी न मिले एक क्षण के लिए तो तड़प छटपटाती हुई मर जाती है, और मैं अभी तक नहीं मरा, ये प्रेम को धिक्कार है हमारे। देखो दशरथ महाराज जी का पुत्र के प्रति राम के प्रति स्नेह था, और वन में चला गया और बस दो बार कहा राम हा राम और बस मर गया, अभी तक मैं नहीं मरा, मेरे इस प्रेम को धिक्कार है। इस प्रकार से कहते 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 रात बीत गई, जो सदा मैया तो आंख भी नहीं खोली, पड़ी पड़ी रोती रह गई। दूसरे दिन सवेरे में स्नान किया उन्होंने नंदगांव के पास ही कृष्ण कुंड में स्नान किए, और स्नान करने के बाद में देखा एक झाड़ी सी है, कदंब पेड़ों की घनी छाया है, उसमें कोई आदमी नहीं जा सकता। उन्होंने देखा कि इसमें कुछ गोपियां हैं, जिस दिन से कृष्ण गए थे मथुरा तब से वो घर में नहीं लौटी थी, उनकी जोगमाया ने प्रतिकृति बना करके दूसरी मूर्ति बना करके घरों में भेज दिया, घर का काम वो सब संभाल रही थी, रसोई बनाना और सब काम, और ये गोपियां तब से घर भी नहीं गई, दिल्ली में आकुल होकर के पड़ी हुई। राधा जी एक छीन करेगा कमल के पुष्प पर सोई हुई है, बची है कि मर गई कोई ठीक नहीं, सत्या उनकी तरह तरह से रक्षा कर रही है। उद्धव जी वहीं पर पहुंचे, श्रीमती जी को प्रणाम किया, दूसरों गोपियों ने कहा अरे ये संदेश हरम रमापते, ये कौन? ये तो मालूम होता है ये श्याम का कोई सेवक है, उसी का संदेश लेकर के आया होगा, सोने के रथ पर चढ़ करके आया है। किस लिए? अक्रूर तो नहीं, किस लिए आया? दूसरा अक्रूर, सोने का रथ किस लिए लाया? पहली बार तो कृष्ण को लेकर के वो चला गया, अब शायद मालूम होता है ये कंस मारा गया और उसका वार्षिक श्राद्ध है, और उस श्राद्ध में पिंड दिया जाता है। मथुरा में पिंड सहज नहीं है, वृंदावन में पिंड सहज ही मिल जाएगा। कैसे? कृष्ण के विरह में लाखों गोपियां मरी हुई होंगी, लाखों गोप मरे हुए, उनका सिर्फ पिंड, हृदय से पिंड निकाल करके कंस का ये श्राद्ध करना है, इसलिए वो आया है। उद्धव जी ने कहा, मन ही मन में सोचा, मैं रथ पर चढ़ करके क्यों आया? क्यों आया? इतने गोपी कहती है, ये आया इसलिए उद्धव रथ पर चढ़ करके अपनी मैया को और बाप को दिखलाने के लिए, ये अब मैं ग्वारिया नहीं, गैया चराने वाला नहीं, अब तो मैं महा मथुराधीश हो गया, और इसलिए अपने एक सेवक को भेजा है रथ पर। इसलिए ये रथ पर चढ़ करके दिखलाने के लिए, ये तुम्हारे मैया बाप, और तुम लोग कभी सोने के रथ पर नहीं चढ़ा होगा, रथ पर ही घोड़े के रथ पर नहीं चढ़ा होगा, सोने के रथ पर क्या, ये दिखलाने के लिए। उद्धव जी और बहुत शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, अपने को धिक्कार देने लगे। थोड़ी देर के बाद में ओ ये रमापति का, रमापति माने, रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी माने राधिका, ओ उन्हीं का ये पति, ये कृष्ण ही मालूम होता, कृष्ण से ये लेकर के संदेश आया है। क्यों, कैसे इसको जानती है तुम? हमने तो देखा नहीं, किंतु हमारी नाके भूल नहीं कर सकती, इसके गले में जो वनमाला है उसका गंध कैसा है, ये कृष्ण के अंगों का गंध इसमें लगा हुआ है, हम भूल नहीं कर सकते, मालूम होता है ये कृष्ण ने इसको दिया है। इस तरह से उन्होंने अनुमान लगा करके ठीक लगाया, ये कृष्ण का ये दूत है। इसके बाद में राधा जी को उन्होंने प्रणाम किया। इतने में एक भ्रमर वहां आया, भ्रमर भन भन करता हुआ राधा जी के चरण कमलों में मानो प्रवेश करना चाहता है। उस समय राधा जी को ऐसा लगा, मालूम होता है ये कृष्ण चले गए मथुरा, और ये उन्होंने वहीं से दूत भेजा है, और ये दूत वहां से मथुरा से आ रहा है। कैसा? मधुपुरी में मधु का अड्डा है, मधु माने जिसको मद्य कहते हैं, मधुपुरी माने मद्य है, और वहां का सबसे बड़ा थोक का व्यापारी वो श्याम है, उसी का ये दूत है। ये भी वैसा ही काला, वो भी अंदर बाहर काला, ये भी ऐसा बाहर काला, उसी को उसने दूत बना करके यहां पर भेजा है। कहा जाए तू अपवित्र, तू हमारे चरणों को मत स्पर्श कर, तू मथुरा से आ रहा है ना, मद्यपान करके बेहोश हो रहा है ना, बुद्धि नहीं है, पवित्र होकर के जाओ, स्नान करके तब आकर के छूना। मैं समझ रहा हूं तेरे ये गुंफों पर ये लाल लाल ये चिन्ह कहां से, कुमकुम कहां से आया? सामनी जी मैं तो पुष्पों पर रहता हूं, पुष्पों का इसमें लगा, नहीं नहीं नहीं, ये मथुरा से आ रहा है, तू यहां से भग जा, उनसे हमारा कोई भी संबंध नहीं है। मृगोरियु कपिंद्रम दिव्य धये लुब्ध धर्मा, उनसे हमारा कोई संबंध अब नहीं, जब भी वो छोड़ सकते हैं तब भी उनको छोड़ सकती हैं। ऐसे मानमती हो गई, एक भ्रमर से मान करके कहने लगी, काम को रोना चाहिए था, रोना या नहीं, क्रोधित होकर के कुछ मान करके उसे अनाप शनाप बातें करने लगी। इसी को प्रजल विजल्प, ये श्रीमद्भागवत का एक रत्न है, विशेष रूप में हम लोग समय अधिक होने पर इसको निश्चित रूप में बतलाएंगे, अभी हमने एक सूत्र के रूप में इसको बतलाया। कह रही है मृगरी कपिंद्रम दिव्य दे लुप्त धर्म, अरे उस कृष्ण से हमारा कोई भी संबंध नहीं,
हमने जो संबंध था वो छोड़ करके चले गए, हमने भी उनको छोड़ दिया, संबंध नहीं छूटा। तुम कह रहे हो उनसे संधि कर लो, ये संधि कैसे हो? ये बतलाओ। प्रेम तो दो प्रकार का होता है, एक होता है वह प्रेम जैसे एक वेश्या के यहां एक पुरुष गया, उसको पैसा दिया, खूब काफी धन रत्न दिया, उसके पास में उसका प्रेम तब तक है जब तक कि उसके पास में पैसा है, इसके बाद उसको छोड़ देता है। भ्रमर फूलों को बैठता है, फूल का रस ले लिया फिर चला गया, प्रेम प्रेम समाप्त हो गया। एक भिखारी है, वो किसी के घर पर भिक्षा मांगने के लिए गया, जय राधे श्याम कहा, घर से भिक्षा दे दी, भिक्षा देने के बाद में साथ ही साथ चल पड़ा। मैं कहा अरे महात्मा जी जरा रहिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सी हरी कथा तो सुनाइए, अरे हमको बहुत दूर जाना है। तो जब तक भिक्षा नहीं मिली तब तक उनसे संपर्क। पक्षी हरे पेड़ों पर रहते हैं, यदि पेड़ सूख गया तो फल नहीं रहा, तो फूल नहीं रहा, तो वन में हिरण कब तक रहती है या रहता है? जब तक कि उसमें घास है, सुंदर फल फूल है, पानी है। यदि इस वन में आग लग गई फिर रहेंगे वहां? उद्धव हमारा प्रेम तो उनसे ऐसा नहीं था। हमारा प्रेम कैसा था? न हमको उनको से कोई स्वार्थ था और न उनको हमसे स्वार्थ था। उद्धव तो बतला सकता है, ऐसा जो निर्मल प्रेम था, उनका कोई भी स्वार्थ नहीं। प्रेम इसी को कहते हैं जिसमें तनिक भी कोई स्वार्थ नहीं है। जगत में प्रेम नहीं है, काम है, और ये काम पाप की जड़ है। शुद्ध प्रेम इस जगत में हो ही नहीं सकता, इसलिए